खुदावन के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। नए अहदनामा में से अब्रानियों के नाम ख़त उसका 11:7 से ईमान ही के सबब से नू ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नज़र ना आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जैसा कि हम कल देख रहे थे कि और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदा को क्या पसंद है। हमने नू की ज़िंदगी में चंद एक बातों पर गौर की थी, आज फिर हम नू की ज़िंदगी में देखेंगे और अपनी ज़िंदगियों की तरबियत और नसीहत के लिए सीखेंगे। हमने सीखा था कि नू के नाम का मतलब क्या है, आराम। मतुसला के नाम के मतलब है कि अदालत होगी या अदालत का होना, और जब हम नू के नाम को देखते हैं तो उसके नाम का मतलब है अलहदा किया हुआ, मखसूस किया हुआ। पुराने अहदनामा में हर एक नाम को जब रखा जाता था उसके पीछे लोग खुदावन खुदा की हिकमत और मर्जी को जानते थे कि ये बेटा किस मकसद के लिए पैदा हुआ है। पुराने अहदनामा में जितने भी नामों को रखा जाता था उनके पीछे एक मतलब होता था। मतुसिला रखा गया तो मतुसिला का मतलब कि खुदा अदालत करेगा। मतुसिला से हनूक पैदा हुआ तो उसका नाम हनूक इसलिए रखा गया कि खुदावन खुदा ने उसे अपने लिए अलहदा किया है, क्योंकि वो 300 साल तक उसके साथ चलता रहेगा और फिर आसमान पर उठा लिया जाएगा। और फिर हनूक के बाद लेमिक से उसका बेटा नू पैदा हुआ, और नू का नाम रखने का मतलब क्या था कि खुदा आराम, सुकून और तमाम मशक्क़त से क्या देगा, रहाई देगा। इसलिए आज हम गौर करेंगे पदैश 6 उसकी पहली 8 पर। यहाँ पर खुदावन खुदा का बंदा मूसा जब इस सच को लिखता है, पदैश की किताब का लिखने वाला कौन है, मूसा नबी, जब उसने इन सच्चाइयों को लिखा तो वो बयान करता है, जब रूहे ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियाँ पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावन ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माने के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। और खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावन ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलून हुआ और दिल में गम किया, और खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया है रूहे ज़मीन पर से मिटा डालूँगा। इंसान से लेकर हैवान और रींगने वाले जानवर और हवा के परिंदे तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलून हुआ। मगर नू खुदावन की नज़र में मकबूल हुआ। पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए रहनुमाई का बाइस हो। इस किस्सा में हम देखते हैं कि खुदा के बेटे, जो फरिश्तों की तरफ इशारा है, खुदा के बेटे जिसके बारे में हमें अय्यूब के किताब में ज़िक्र मिलता है। अय्यूब बाइबल मुकद्दस की सबसे पुरानी किताब जो पहली कह सकते हैं कि तारीख के लिहाज से लिखी जाने वाली सबसे पुरानी किताब है। वहाँ पर हम देखते हैं कि जब खुदा के बेटे आए तो उनके दरमियान शैतान भी आया। सो खुदा के बेटों के लिए तीन जगह पर हमें ये हवाला मिलता है, पदैश छठा बाप, अय्यूब पहला बाप उसकी छठी आयत, अय्यूब दो बाप उसकी पहली आयत, और अय्यूब 37वां बाप वहाँ पर जिक्र मिलता है। सो ये तमाम हवाला जात किसकी तरफ इशारा हैं? खुदा के बेटे यानी के फरिश्तों की तरफ। सो सवाल पैदा होता है, ये कौन से फरिश्ते हैं? ये वो फरिश्ते थे जो लूसीफर की नाफरमानी के बायस उसके साथ आसमान से ज़मीन पर गिराए गए। जब ज़मीन पर गिराए गए तो इन फरिश्तों ने क्या किया? उस वादे को जो खुदावंद खुदा ने किया था, वो वादा कौन सा था? कि मैं औरत की नस्ल से एक मनज्जी को पैदा करूंगा जो सांप के सर को कुचलेगा, अबलीस को तबाहो बर्बाद करेगा और फतह को और ज़िंदगी को उसके वसीला से ज़मीन पर बहाल करूंगा, उस रफाकत को जो टूटी हुई थी उसे फिर वापस लाऊंगा। सो इन तमाम गिराए हुए फरिश्तों ने क्या किया? आदमियों की बेटियों के साथ क्या किया? ब्याह किया। यहाँ पर जब हम लफ्ज़ देखते हैं कि उन्होंने चुना, जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया, जब हम दूसरी आयत का दूसरा हिस्सा देखते हैं। तो यहाँ पर जब अबरानी ज़बान में देखते हैं तो जैसा उन्होंने मुनासिब समझा उन्होंने औरतों को लिया और उनसे शादी की। और इन खुदा के बेटों ने जो फरिश्तों की तरफ इशारा है, जब इंसान की बेटियों से शादी की तो उनसे जो औलाद पैदा हुई उसे बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? जब्बार। जब्बार चौथी आयत में लिखा है, उन दिनों में ज़मीन पर बहुत जब्बार थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। सो इंसान की बेटियों और फरिश्तों का जो गिराए हुए फरिश्ते थे, जब उनकी शादियां हुई, जब उन्होंने ये काम किया तो उनसे क्या पैदा हुए? जब्बार, जिसे कहते हैं कि इंसानी सोच या इंसानी कुव्वत से बालातर कुव्वतें। उनके कद अजीब थे, उनकी कुव्वत अजीब थी, उनकी ताकत जो थी वो क्या थी? अबलीसी से जिसे कह सकते हैं। सो जब ये सब हुआ तो खुदावन खुदा उनसे खुश ना था, इंसान से खुश ना था, इसीलिए खुदावन खुदा ने नूह को हुक्म दिया कि तू मेरे लिए एक कश्ती बना और उसमें तमाम रेंगने वाले, उड़ने वाले और तमाम दूसरे जानवरों को रखना, जिन जिन को मैं तुमको कहूँगा, कि हर एक नस्ल का जोड़ा जोड़ा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसान की बदी बहुत बढ़ गई जिससे खुदावन खुदा को खुशी ना हुई। और नूह ने तजर्बा से, नूह के बारे में बार बार कहा गया है, आठवीं आयत को देखते हैं कि तमाम इंसान बदी से पुर थे, बदी से भरे हुए थे, तो नूह खुदा की नज़र में क्या हुआ? मकबूल हुआ, पसंदीदा ठहरा, जिससे खुदा को खुशी थी। और क्या लिखा है नौवीं आयत में? नूह का निसबनामा यह है कि नूह मर्द रास्तबाज और अपने ज़माने के लोगों में बेऐब था। वो तमाम बदी में पड़ गए जैसे सदूम और गमूरा का हाल था। वहाँ पर इब्राहिम का सिर्फ भतीजा, उसकी बीवी, उसके बेटे और उनकी बेटियाँ ही रास्तबाज निकले। जब इब्राहिम ने कहा तो वहाँ पर खुदा ने निगाह की तो लूत के ख़ानदान के सिवा कोई और रास्तबाज ख़ानदान वहाँ पर ना मिला। सो जब जब बाइबल मुकद्दस रास्तबाज का जिक्र करती है तो वो लोग जिन्होंने ईमान से उस रास्तबाजी को हासिल किया है, यहाँ पर कि वो अपने ज़माने के लोगों में मर्द रास्तबाज था, यानी कि ईमानदार था, ईमान पर कायम था कि वो ज़िंदा खुदावन खुदा का मानने वाला है। और बाकी तमाम उस वक्त की जो नस्ल सी, वो तमाम बदरूहों से पुर हो गई, वो तमाम अपनी अपनी बदकारियों में फंस गए। और इसके पीछे जो सोच कही जाती है कि क्यों खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों से ब्याह किया, ताकि मसीह का वो वादा पूरा ना हो। जहाँ चाहें भी हम देखते हैं कि औरत पर हमला किया गया है, वो इसी बात की तरफ इशारा था कि मसीह औरत की नस्ल से पैदा ना हो। यहाँ पर यही वो हमला है कि औरत की नस्ल पर हमला किया गया ताकि मसीह का वो वादा पूरा ना हो के वो औरत की नस्ल से पैदा होगा। यहाँ पर भी जब हम नए अहदनामा में देखते हैं कि तमाम पलोठों को मारा जाए, उसके पीछे भी हमारे मुखालफ की क्या थी, यही सियासत थी कि मसीह पैदा ना हो। जब इब्राहिम को खुदावंद खुदा ने कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा, तू मेरी बात मान, मेरे कहे के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर, तो इब्राहिम ने अपनी कोशिश से क्या किया, अपनी बीवी की बात मानी और अपनी नौकरानी जो उसकी लौंडी थी उसके पास गया और खुदा की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा करने की कोशिश की और औरत की नस्ल से फिर मसीह के आने की क्या बनी, रुकावट का बायस बना। लेकिन खुदावन खुदा है जो हर मसले का हल ढूंढ के रखता है। सो नूह रास्तबाज था, नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, उससे सेम, हाम और याफ पैदा हुए और उनकी नस्ल। सो खुदावन खुदा ने उनको हुक्म दिया, खासकर नूह को, कि मेरे लिए एक कश्ती बना क्योंकि मैं बनी नूह इंसान का खात्मा करने वाला हूँ, बनी नूह इंसान का खात्मा करने वाला हूँ, उनको बर्बाद करने वाला हूँ, उनकी नस्ल को ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि वो तमाम बदी में फंसे हुए हैं। मेरे साथ एक हवाला निकाले जिसके बारे में नया अहदनामा हमें बताता है, मत्ती 24वां बाप उसकी 28 आयत। फिर वापस आएंगे हम नूह की ज़िंदगी पर ही। मत्ती 24वां बाप उसकी 28वीं आयत, यहाँ पर खुदावंद का बंदा मत्ती रसूल पदेश के उस वाक्या को जो हजारों साल पहले हुआ यूं लिखता है, मत्ती 24वां बाप उसकी 38वीं आयत, मैंने 28वीं आयत कहा, शुक्रिया माफ करना। और यहां पर क्या लिखा है 38वीं आयत में, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते थे उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तूफान आकर उन सब को बहा ले गया उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। सो उस दौर में लोग शादी ब्याह खाने पीने में अपनी दिलचस्पियों में मसरूर थे। ये वो तमाम जबार थे जिनको नाफलीन कहा जाता है, जिससे कह सकते हैं कि जाति जूलियट की, कहते हैं कि नस्ल मिलती जुलती है। जाति जूलियट आम इंसानों से कद में ज़्यादा, कुवत में ज़्यादा, और वो क्या कहते कि अपनी हड्डियों में और तमाम चीज़ों में आम इंसान से क्या था, दुगना था। और बाइबल मुकद्दस में हमें पता चलता है कि जाति जूलियट के और भी भाई थे, और फिर हमें पता चलता है कि जब वो मुल्क कनान में दाखिल होने वाले थे तो वहाँ पर जब्बार पाए जाते थे जो इंसानी कुव्वत नहीं बल्कि अबलीसी कुव्वतों से और गिराए हुए फरिश्तों के मलाप से पैदा हुई हुई नस्ल थी। सो लोग शादी ब्याह में मसरूर थे, अपनी अभी बदियों में फंसे हुए थे, तो खुदावंद खुदा ने क्या कहा कि इनका एक ही हल है कि इनको मैं ज़मीन पर से ख़त्म करूँगा। सो खुदावंद की मर्ज़ी क्या थी कि नस्ल इंसानियत को जो उस वक्त गुनाह में गिर पड़ी थी, औरतों की नस्ल को जब बारों ने बर्बाद किया था, उस नस्ल को ख़त्म करने का एक ही हल था कि आसमान से बारिश बरसे। आसमान से क्या बरसे, बारिश बरसे। ये पहली दफ़ा बारिश थी, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कलाम पाक कहता है कि इससे पहले कभी बारिश ना हुई थी, कभी भी बारिश के बारे में लोगों ने तसव्वुर ना किया था। क्यों? बाइबल मुकद्दस कहती है, नहीं यकीन मेरे साथ निकालें पदेश की किताब, पदेश की किताब उसका 2 बाप। यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है कि क्यों खुदावन खुदा ने नूह से कहा कि मैं आसमान की खिड़कियाँ खोलूँगा। जैसे हमारे घरों में खिड़कियाँ हैं, वैसे आसमान की क्या हैं, खिड़कियाँ हैं। खुदा ने आसमान की खिड़कियाँ खोलीं और 150 दिन तक पानी चढ़ा रहा, 40 दिन 40 रात तक पानी बरसता रहा। क्यों? क्योंकि उससे पहले बारिश ना हुई थी। जब खुदावन खुदा ने पदेश 2 बाप उसकी 4 आयत को देखें, ये है आसमान और ज़मीन की पैदाइश जब वो खलक हुए, जिस दिन खुदावन खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। और ज़मीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदावन खुदा ने ज़मीन पर पानी नहीं बरसाया था। और अब ज़मीन जोतने को कोई इंसान था और ना ही ज़मीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि ज़मीन से कुर उठती थी और तमाम रूहें ज़मीन को शराब करती थी। ज़मीन से क्या उठती थी? कुर उठती थी। कुर का मतलब यानी कि बुखारात, जैसे कहते हैं धुंध, जिसे धुंध कहते हैं, वो नमी ज़मीन से उठती थी और ज़मीन को शराब करती थी। आसमान पर से कभी भी पहले पानी नहीं बरसा था। सो जब नूह ने यह पैगाम देना शुरू किया कि खुदा ने उसे कहा कि गोफर की लकड़ी की एक कश्ती बना, 14वीं आयत, उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना, उसके अंदर और बाहर राल लगाना। इसका हमें बाइबल मुकद्दस में कहीं और भी जिक्र मिलता है। ये खुदावंद यीशु मसीह की इंसानियत की तरफ इशारा है। लेकिन आप सबको याद होगा, जब मूसा को उसकी माँ ने उस छोटे टोकरे में बंद किया, तो वो कौन सी लकड़ी थी? उसे क्या लगाई गई थी? राल लगाई गई थी, जो इस बात के लिए थी ताकि उसमें पानी ना जाए। सो खुदावन खुदा ने जब ये मटेरियल नूह को बताया, तू गोफर की लकड़ी लेना और अपने लिए कश्ती बनाना, उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना, उसके अंदर बाहर राल लगाना, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चढ़ाई 50 हाथ, उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो, और उसमें रोशनदान बनाना और उसे ऊपर से हाथ छोड़कर ख़त्म कर देना। जब खुदावन खुदा ने यह सारा इंतज़ाम बताया, तो खुदावन ने कहा कि वो दिन आ गया है कि जब मैं बने नूह इंसान को, जिनके गुनाह बढ़ चुके हैं, उनको तबाह बर्बाद करूँगा। सो ये सारी बातें जब नूह ने सुनी, तो 22वीं आयत कहती है, और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदावन ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया। सो ये सब ये बातें हो गई, तो फिर क्या लिखा है? 7वां बाप उसकी पहली आयत, और खुदावन ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझको अपने सामने इस ज़माना में रासबाज देखा है। जैसे उस दौर में खुदावन देखता था, जब मसीह आएगा तब भी जो भेड़ें हैं वो अलहदा की जाएंगी, जो बकरियां हैं वो अलहदा की जाएंगी, जो रासबाज हैं वो लैदा किए जाएंगे, जो नाराज़ हैं वो लैदा किए जाएंगे। सो इससे पहले ना कभी बारिश हुई थी, इंसान की नस्ल को तबाह करने के लिए घुराए हुए फरिश्तों ने क्या किया? औरतों से शादी की, और जिससे जब्बार पैदा हुए। ऐसे कदीम ज़माने के सूरमा जो बड़े नामवर हैं या नामूर हैं, जो फाता ठहरे, जिन्होंने शिकस्त ना खाई, उन सब को फना करने का, अबलीसी कुवतों को ख़त्म करने का खुदा ने हल क्या निकाला कि नूह को चुने कि वो कश्ती बनाए। इसलिए हम सब इस वाक्या से क्या सीखते हैं? सादा तौर पर कि खुदावन खुदा ने नूह को हुक्म दिया और उसने उसे खुश करने के मुताबिक वैसा ही किया जैसा उसे करना था, एक कश्ती बनाई। हम यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब उसने इतनी बड़ी कश्ती बनाना शुरू की, तो लोगों ने कहा होगा कि ये बेवकूफ़ है। क्यों कहा होगा? क्योंकि पहले कभी उन्होंने पानी आसमान से बरसने का कभी तसव्वुर नहीं किया था, कि कभी भी उससे पहले बारिश ना हुई थी। लोग शादी ब्याह कर रहे थे, लोग अपनी बातों में मगन थे, और नूह कह रहा था तूफान आ रहा है, आसमान पर से पानी बरसेगा, और किसी ने उसकी ना सुनी। जब हम 7वां बाप उसकी 5वीं आयत को देखते हैं, और नूह ने वो सब किया जैसा खुदावन ने उसे हुक्म दिया था। हमें भी ज़रूर है कि वैसा ही करें जैसे खुदावन ने हमें हुक्म दिया है। हमें हुक्म क्या दिया है? जैसे शिगिर्दों को कहा था, मत्ती की इंजील उसका 28वां बाप उसकी 19वीं आयत, जाओ और सब कौमों को क्या बनाओ, शिगिर्द बनाओ। शिगिर्द बनाने का क्या दिया गया है, हुक्म दिया गया है। हमें पैगाम देना है, कोई यकीन करे या ना करे। हमें रास्तबाजी के बारे में ऐलान करना है कि यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाजी है, कोई जो कोई कबूल करेगा वो बच जाएगा, वरना नूह के दौर के जैसा दौर होगा कि लोग तबाह बर्बाद किए जाएंगे। और छठी आयत में लिखा है, और नूह 600 बरस का था जब पानी का तूफान ज़मीन पर आया पहली दफ़ा, और खुदावन ने हुक्म दिया उसे। जब हम सातवें बाब को पढ़ते हैं तो सातवें बाब की 10वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, और 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि तूफान का पानी ज़मीन पर आ गया। नूह की उम्र का 600वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समंदर के सबब से सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं। और 40 दिन और 40 रात ज़मीन पर पानी बारिश होती रही। सो खुदावन खुदा ने नूह को ये करने के लिए कहा, और उसने उससे कहा कि तू अपने इस कश्ती में हर उस जानदार को जो जोड़ा जोड़ा है तेरे पास आएंगे। और खुदावन खुदा ने उस कश्ती को खुद अपने हाथों से क्या किया, बंद किया। जब वो सारे अंदर चले गए, ऊपर चले गए, इतनी बारिश हुई कि दुनिया के जितने ज़मीन के ऊंचे पहाड़ थे, केटू का पता है किसी को, केटू को दुनिया का दूसरे नंबर पर ऊंचा पहाड़ है, उससे भी पानी क्या कहते हैं, जब हम देखते हैं 7 बाप उसकी 19वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, और पानी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा चढ़ा और सब ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में हैं छुप गए। केटू के अलावा जितने भी हैं वो सब छुप गए। हो सकता है इससे केटू से पहले कोई और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों। पानी उनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ा और पहाड़ डूब गए। सो खुदावन खुदा अपने कॉल में सच्चा है, और जो कोई उसकी ताबेदारी करता है वो बच जाएगा। इसलिए हम सब की पनाह कौन है, यीशु मसीह। जैसे उस दौर में पानी से बचने का वसीला कश्ती थी, मूसा को उनके तमाम पलोठों को मारने का कि सब पलोठे मारे जाएं, मूसा किस तरह बच गया उस छोटी सी टोकरी में जिसे रान और गोफर की लकड़ी से तैयार किया गया गालबन, वो बच गया और फरून के घर में उसकी पनाह बनी। हम सब के लिए भी क्या पनाह है, दूसरा करंथियों 5 बाब उसकी 17 आयत, इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं वो महफूज हैं। रोमियो 8 बाब उसकी 1 आयत, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। दूसरा करंथियों 5 बाब उसकी 17 आयत, इसलिए कि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिंदा किए जाते हैं। सो हम मसीह में महफूज हैं। लेकिन बात यहाँ पर, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। कहानी का हिस्सा क्या है कि हम उसके पैगाम को दूसरों तक लेकर जाएं। हम अपनी ज़िंदगियों में देखें कि खुदावन खुदा हम पर आसमान से निगाह करके कहता है, मेरा रासबाज बंदा। अगर हम यीशु पर ईमान रखते हैं तो हम रासबाज हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम रासबाजों की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं या नहीं। आए हम खुदा के जुड़ चुके हैं।